व्रजामः। देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। माघ शुक्ल पंचमी या वसंत पंचमी, वसंत की शुरुआत पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ईशावास्य उपनिषद की चर्चा में हम तीन मंत्रों की 9, 10, 11 की चर्चा कर रहे थे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायामृतः। जो लोग बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं मैटेरियल लाइफ में, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो मिजरी में पड़ते हैं, दुख या पेन, जिसको डार्कनेस का अंधेरे में गिरते हैं। बट जो लोग इनग्रॉस्ड होते हैं केवल और केवल स्पिरिचुअल लाइफ में, विद्या में, वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में, तो उनकी कल्मिनेशन है एट द कंसिक्वेंस है, वो जो मैटेरियल लाइफ में पड़े हुए लोगों से भी गहरे दुख में पड़ते हैं। ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ लोग जानने के बावजूद भी तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगला मंत्र, हमने इसकी चर्चा काफी की, अगले मंत्र की भी चर्चा की। वो कहते हैं अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मैटेरियल लाइफ है वो खराब है, या जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी खराब है, या दोनों में से एक बैड है एक वर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि जो केवल और केवल एक चीज में ही पड़ा रहता है, दूसरे को इग्नोर करता है, दूसरे को साइडलाइन करता, उसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम ज्यादा होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ को, एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल लाइफ को चुनता है और मैटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल इग्नोर करता है। वो दोनों तरफ से खराब होता है, अंदर से तो हिपोक्रेट बनता ही बनता, बिकॉज ही इज जस्ट गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ही हैज नथिंग, उसके अंदर कोई ऐसा पल्स इंपल्स नहीं है, सिर्फ वो मजबूरन जब स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करता है, बॉडी माइंड इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जो बाकी लोगों की तरह सांसारिक सुख तो भोग ही नहीं पाता है, मेंटली भी वो इतना हिपोक्रेट बनता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव नहीं करता, सिवाय कि वो ऊपर से कुछ बहुत बड़ा बाबा दिख जाए, कोई रिलीजियस लीडर दिख जाए, अंदर से तो वो आम आदमियों से भी ज्यादा खोखला होता है। पर यह मंत्र कहता है दोनों की अपनी अपनी यूजेस हैं। अविद्या जो मैटेरियल लाइफ है उसकी अपनी यूज है, उसको आप ऐसा ना सोचे कि वो उसका कोई यूज नहीं है, और स्पिरिचुअल लाइफ का अपना यूज है। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते, एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय गॉड इट इज ए यूजफुल थिंग, इट कैन नॉट बी नॉनसेंस। इवन हमारे इमोशंस में भी प्यार है, नफरत है, घृणा है, गुस्सा है, दया है, ये सबका अपना अपना यूज है। ओनली थिंग है कि जो यूज करता है वो उसको कहां इंप्लीमेंट करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी के घर में रोशनी भी बल्ब भी जला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से किसी को मार भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो चीजें खराब, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं होता। ओनली थिंग है कि जो यूज करता है वो कैसे यूज करता है। मैटेरियल चीजों का अपना यूज है और जो स्पिरिचुअल लाइफ का अपना यूज है। मैटेरियल चीजें क्या है? जो भी बॉडी से जुड़े हुए चीजें हैं, जो भी आपके फिजिकल पार्ट को कंसोल करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, उसकी खुशी के लिए काम करते हैं, वो सब मैटेरियल चीजें हैं। पर हमारी जो लाइफ है वो तो सिर्फ बॉडी और माइंड से बना हुआ नहीं है, उसका और एक पार्ट है सोल। तो जो चीजें सोल को डेवलप आगे बढ़ाने के लिए, उसकी परम शांति के लिए काम किया जाता है, वो सब स्पिरिचुअलिटी है। पर तब भी जब आप बॉडी और माइंड को इग्नोर करते हो तो फिर हम मुसीबत में फंसते हैं। पिछली बार हमने उसकी चर्चा की, अविद्या जो मैटेरियल वर्ल्ड है जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, आपकी डे टू डे लाइफ के, आपके घर है, परिवार, ये सब अविद्या है। अगर उपनिषद की भाषा के दृष्टि से आप रीनेम करें इंस्टीट्यूशन का, तो जिसको आज हम विद्यालय कहते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कहते हैं, उनका नाम एक्चुअली होना चाहिए अविद्यालय। मतलब अविद्या मीन्स जहां आपको बॉडी और माइंड को से रिलेटेड चीजें पढ़ाया जाता है, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, लैंग्वेज हो, इवन शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि जो वेद उपनिषद, अगर आप इनको सिर्फ बुकिश नॉलेज के रूप में पढ़ते हो, ये भी अविद्या है, क्योंकि इसे आत्मा का कुछ भला नहीं होता है सिवाय कि आप नॉलेजेबल बनते हैं, आपकी अवेयरनेस बनता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाते हैं, ये भी अविद्या की कैटेगरी में जाता है। आप सोसाइटी में, आपकी रेपुटेशन बढ़ता है, आपका रेट बढ़ता है, वैल्यूज बढ़ता है, पर और कुछ नहीं होता है। तो दोनों की अपनी अपनी यूज है। हमें रोटी भी चाहिए, रोटी के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, पर रोटी को अगर कोई सब कुछ मान बैठे तो भी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ता, और रोटी को जो इग्नोर करे कि रोटी के बिना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वो उससे ज्यादा गहरे अंधेरे में गिरता है। दैट्स इट। हमें मेडिकल्स भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, पॉलिटिशियन चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, सब चाहिए। इनके बिना हमारे जीवन में उन्नति नहीं होगी। जिसको महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं, बोले धर्म क्या है, यतो अभ्युदय निःश्रेयसो सिद्धि सधर्म। धर्म वो है जिसको आजकल लूज ट्रांसलेशन में हम लोग रिलीजियन कह देते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द धर्म। बोले धर्म वो व्यवहार है, वो कंडक्ट है, वो बिहेवियर है, जिससे तुम्हारा अभ्युदय हो, चारों तरफ से उदय हो, मतलब प्रॉस्पेरिटी आपको मिले, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ें, अब मरने के बाद निश्रेय जो परम आनंद है, जो सुप्रीम गोल है, उसको अचीव करो। वो जो अभ्युदय है वो जिससे भी हो, अभ्युदय क्या, शरीर, मन, बुद्धि, इसको जहां से खुशी मिले, अच्छा घर बनता है, अच्छी गाड़ी होती है, रोड्स अच्छे होते हैं, मेडिकल, आपकी हेल्थ अच्छा रहता है, ये सब एंटरटेनमेंट होता है। देश अगर सुचारू रूप से अच्छी तरह रूल्ड होता है तो आपको क्रिमिनल्स कम होते हैं, आपका लाइफ ज्यादा इजी होता है, ये सब अविद्या है। तो इस ये भी हमारे लाइफ में जरूरी है, पर अगर कोई यहीं अटक जाए फिर तो जीवन के अंदर के जो खोखलापन है उसको भर नहीं पाते। हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में या वेस्टर्न कल्चर जहां जहां स्प्रेड हुआ, जहां पैसा और नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे, वहां हम देखते हैं जब लोग बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनके अंदर डिप्रेशन की कोई सीमा नहीं होती है। जहां जितना आपको पैसा और ग्लैमर दिखेगा वहां डिप्रेशन की, सुइसाइड सिम्टम की सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैटेरियल लाइफ को सब कुछ समझने वाले लोग अपने पर्सनैलिटी का हाफ को इग्नोर करते हैं, और उस हाफ की जो खुराक है उसके लिए कुछ किया नहीं है। हाफ को भरने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अंदर से बड़ा खोखला सा लगता है। तो इसीलिए हमें वो भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, लाइफ भी जरूरत है, रूट भी जरूरत है। पेड़ के रूट के बिना पेड़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आपको पेड़ चाहिए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूट ऑफ द ट्री, विदाउट दैट यू कैनॉट गेट एनी ट्री। पर अगर कोई रूट को ही सब कुछ मान बैठे, स्टिल ही विल नॉट गेट द ट्री। अगर रूट मेरे लिए सब कुछ है, पेड़ को मैं काटता रहूं और रूट को ही संभालता रहूं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो पेड़ जो ऊंचा है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, रूट आपकी जो है वो मैटेरियल लाइफ है, रोटी आपकी मैटेरियल लाइफ है, लाइफ उससे बियॉन्ड जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ है। तो जो इन दोनों के बीच को, दोनों की यूज को समझता है वो फिर आगे बढ़ता है। मंत्र की जो लास्ट लाइन है वो टॉपिक से थोड़ा हटके है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं इति सुश्रुम, ऐसा हमने सुना है, धीराणाम, उन ज्ञानियों से, ये नास्तत विचचक्षिरे, जिन्होंने हमें बताया। वी हैव हियर्ड ऑल दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दोज वाइज पीपुल हु एक्सप्लेन इट टू अस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देवियों सज्जनों, आप अगर कभी अनसीन इंडियन लिटरेचर पढ़े, मोस्टली इन संस्कृत, वेदी वेदाज हो, उपनिब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, उपनिषद, वेदांगाज, वैदिक दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप देखें, आपको जो सबसे कॉमन चीज मिलेगा, किसी भी शास्त्र का जो ऑथर है, जिसको आज हम जानते हैं कि इस ग्रंथ को इसने लिखा, पर उसकी ऑथरशिप का कोई रेफरेंस आपको बुक में नहीं मिलेगा। वो तो सैकड़ों हजारों सालों के बाद एकेडमिशियंस, ये उनके जो ट्रेडिशनल जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कोशिश किया ट्रैक करने के लिए कि इसको किसने लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा? ये कंसेप्ट ही नहीं था ऑथरशिप लेने का। ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान तो हमारे पहले से भी था, हमारे बाद भी रहेगा। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें कुछ पता चला हम दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अगर आप CNN या फॉक्स न्यूज चैनल में कोई न्यूज देखते हैं, किसी मिनिस्टर ने, किसी सेक्रेटरी ने, किसी लीडर ने कुछ किया, उनको न्यूज पता लगता है, आपके तक पहुंचा जाते हैं। अगर वो उस न्यूज बताने वाले को ये गलतफहमी होने लगे, आई एम द क्रिएटर व ऑथर ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट्स, तो प्रॉब्लम होने लग जाएगा। आजकल समझना मुश्किल है, क्योंकि हम तो दूसरों की ज्ञान चुरा कर अपने नाम पर छाप देते हैं। सारी दुनिया में ये इसकी प्रॉब्लम है। दूसरों से कोई व्यक्ति मेहनत करके, पढ़ लिख करके कुछ लिखता है, उसको हम उठा करके अपने नाम पर कर देते हैं। पर प्राचीन काल में उल्टा था। इवन जो ओरिजिनल ऑथर भी होते थे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, जो अपने रियलाइज्ड ज्ञान के बेस पर हमारे पास ज्ञान रखते थे, वो कभी ये क्लेम नहीं करते थे या अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना कोई रेफरेंस कहीं नहीं छोड़ते थे। और क्या उनकी जो परमानेंट स्टेटमेंट होता है, यही इति सुश्रुमधीराणाम। आप कोई भी उपनिषद उठाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही सेंस आएगा कि ऐसा हमने सुना है, ये हमारा अपना नहीं है, हमें किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया। अगर आप दर्शन शास्त्र देखें, वैदिक दर्शन शास्त्रों को, वो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, उसकी शुरुआत भी ऐसी, वो अलग टाइप की होती है, फिलोसॉफिकल बुक्स है, उनकी वे ऑफ टॉकिंग दूसरा है, बड़े शॉर्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उपनिषद में थोड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा सेंटेंस होता है, उसकी शुरुआत होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो योगानुशासनम, अथ से, अथ मतलब इसके बाद से, मतलब बहुत दिनों से बहुत कुछ चीजें बात हो रही थी, हमने पढ़ा सुना और आपके पास रख रहे हैं। पर आप अगर रिसर्च करें, आपको इससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला। He was the first person who wrote the yoga, wrote about Vedanta, wrote about Mimamsa. But he himself claimed that I am not the author. I got it from somewhere else. ये क्यों था? क्योंकि जब आप realized person हो जाते हैं, जब आप self realize करते हैं, फिर आपको ये name, fame, इन चीजों में कोई मतलब नहीं रहता है। सब ईश्वर का है। इसलिए ये जो ट्रेडिशन है ऑथरशिप की क्लेम ना करने की, ये तब तक इंडियन ट्रेडिशन में सर्वाइव किया जब तक ऋषि ट्रेडिशन रहा। इवन संस्कृत लिटरेचर में भी जब आचार्य ट्रेडिशन आने लगा, तो ऑथरशिप की जो ट्रेडिशन था खत्म हो गया। तब अब आया कि मैं इसका ऑथर हूं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जो आचार्य परंपरा आई हमारे शास्त्र परंपरा में, तो वहां तो क्लेम आने लगा, खंडन, मंडन, ऑथरशिप, ये सब क्या आने लगी। क्योंकि जैसे ही आप रियलाइज्ड पर्सन होता है, उसका रिएक्शन दुनिया के साथ अलग होता है, और जो नॉलेजेबल होता है, लर्नड होता है, विजडम से भरा हुआ होता है, उसका उसके दुनिया के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। इसलिए जो ऋषि परंपरा में शास्त्र है, स्वामी दयानंद कहते हैं आर्ष ग्रंथ, दोज लिटरेचर्स ऑथर्ड बाय ऋषिज, वो जो आर्ष ग्रंथ में, ऋषि प्रणीत ग्रंथों में, वेद से लेकर जैमिनी तक जितने भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी आपको ऑथरशिप नहीं मिलेगी कि मैंने इसको लिखा, वो प्रोक्लेमेशन कि मैं इसका ऑथर हूं, नहीं मिलेगा। एक तो वो जो मैं, वो ईगो लाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या छोटा सा आदमी हूं, 100 साल मैक्सिमम मेरी लाइफ है, मैं कहां से क्या लाऊंगा। ईश्वर की व्यवस्था है, जो इस संसार में मेरे से पहले भी वो ज्ञान था, मेरे बाद भी रहेगा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे थ्रू ये बताया गया। इसीलिए कोई भी शास्त्र आपको इस बारे में नहीं बताएगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उपनिषद है, जो सारे जो ऑथेंटिक 13 उपनिषद है उनमें से एक फेमस और छोटा उपनिषद है। इस उपनिषद के बाद उसका छोटा नंबर में प्रश्न उपनिषद आता है, तो बड़ा सुंदर उपनिषद है। तो उपनिषद में एक स्टोरी आती है, बिगिनिंग होती है इससे कि 6 क्यूरियसिटी रखने वाले शिष्य, जो जिज्ञासा करने वाले जो शिष्य हैं, वो आते हैं पिप्पलाद ऋषि के पास, जो कि गुरुकुल के आचार्य हैं। पिछले बार भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब गृहस्थी लोग हैं, जब इनको डाउट्स होते थे तो वो जंगल में गुरुकुलों में जाते थे, जिन जहां उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, पर बच्चे तो रेजिडेंशियली वहां रहते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, पर अगर दूसरे लोगों को कभी कोई जिज्ञासा होती थी गुरु से मिलने जाते थे। तो पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि हमें कुछ आपसे जानना है, जो भी उन्होंने प्रश्न पूछा। अब पिप्पलाद ऋषि ने क्वेश्चन को सुना, सुनने के बाद जो आंसर दिया वो सुनने लायक है। कहते भूय एव तपसा आब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वं होवक्ष्याम इति। कहते देखो, ये जो तुमने ब्रह्म जिज्ञासा की, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इसको जानने से पहले तुम्हारी अपनी उसको जानने की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता। तो थोड़ा योग्यता बढ़ाओ, यहां रहो एक साल तक, 6 महीने तक रहो, कुछ ब्रह्मचर्य और पालन करो, कुछ तपस्या और करो, अपने शरीर और मन को और शुद्ध करो, तब आना पूछने के लिए। पूछना पर ध्यान रखना, पूछना पर अगर मुझे आता होगा तभी बताऊंगा। मतलब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आपको कुछ, मतलब आप बिजनेस में भी हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको कोई पूछ ले कि मैं बीमार हूं, बस बता ही दे, पूछे नहीं, तो आप पूरी लिस्ट सुना देते हो, आपको कौन सा मेडिकल जाना है, सारी मेडिकल हिस्ट्री आप ही सुना देते हो, एक मिनट नहीं लगाते हो कि भाई मैं सीए हूं, मेरे पास मत आया करो, है ना। नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर गाइड कर सकता हूं। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, बोलो जी आत्मा क्या होता है, वो कहेगा बैठो मैं ही सुनाता हूं, 3 घंटे तक तो मैं सुनाएगा। हर आश्चर्य की बात, ये आप नहीं, हम जैसे लोगों को भी पड़ जाते हैं, घंटों बैठा के सुनाते रहते हैं और हमें सुनना पड़ता है। मतलब जिसकी जिसमें ऑथोरिटी तो छोड़िए, जिसने एलिमेंट्री क्लास भी नहीं किया वो भी घंटों लेक्चर देने को तैयार बैठा होता है। पर ऋषि कहता है देखो, सवाल पूछना, पर आता होगा तो बताऊंगा, पर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। बताएगा पिप्पलाद ऋषि ही, पर अंदर से वो ये पालता, ईगो नहीं पालता है कि मैं जानता हूं, वो उसी का सब्जेक्ट है। ये आपको समझ में आएगा, जो कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ हम जीते और ऋषि जिस चीज को बताने की कोशिश करते हैं। ज्ञान किसी का नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है, मेरा कुछ अपना नहीं है, तो वो उस चीज की एक्सेप्टेंस से स्वीकृति है कि मैं तुम्हारा हूं। जब आप हवन करते हैं, हर मंत्र की आहुति में जो रेगुलर आहुति देते हैं उसमें आप बोलते हैं इदं नमः, ये तो ज्ञान की बात है, वहां धन की बात है। जब आप हवन करते हैं वहां क्या बोलते हैं, हर स्वाहा के बाद दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। क्यों भाई, तुम्हारी पैसे के कमाए हुए हैं, तुमने मेहनत से कमाया, उस कमाई हुई से आप सामग्री लाए, घी लाए, प्रसाद लाए, खाना लाए, जो कुछ लाए वो तुम्हारा ही है, दक्षिणा भी तुम्हारे पैसे से दिया, सब कुछ तुम्हारा है, नहीं कैसे। पर मंत्र में बार बार आपको जबरदस्ती रिपीट कराया जाता है इदं न मम इदं न मम। कोई रिवोल्ट करना चाहे तो रिवोल्ट कर सकता है, पंडित जी बंद करो, ये क्यों बार बार कहते हो इदं न मम, हम मेरे से सुनवाते हो, ये तो मेरा पैसा है, तुम क्यों मेरे से जबरदस्ती बुलवाते रहते हो, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। भाई आप कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है ना, सब फर्क पड़े समझ में आए ना आए, बस इट्स पार्ट ऑफ, वो सुपरफिशियल ऊपर इतना जम गया है हमें उसे फर्क नहीं पड़ता है, बारिश होती है कि ठंड होता है, ठीक है सब होता ही होगा। पर जो थोड़ा सेंसिटिव है वो रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करना अच्छी बात होती है देवियों सज्जनों, रिएक्ट ना करने से दुनिया चेंज नहीं होती है, तो कर सकता है। तो भाव यही था कि तुम्हारे पहले भी ये धन संपत्ति दुनिया यहीं पर था, ओन्ड बाय द रियल ओनर। तुम्हारे बाद भी जिन सबको तुम कहते हो ये मेरा है, वो भी यहीं रहेगा, ओन्ड बाय द रियल ओनर। तुम 50, 100, 150 साल मैक्सिमम आए हो इस दुनिया में, एंजॉय करो, यू आर जस्ट ए कंज्यूमर, एंजॉय व्हाट एवर यू हैव, यू आर गेट, बट डोंट ओन ऑल दिस थिंग्स। तुम ओन करोगे भी तुम्हारा हो भी नहीं सकता, मरने के बाद तुम ही अकेले चले जाओगे, सब तुम्हारे बच्चे खाएंगे, पड़ोसी खाएंगे, कोई दूसरे अगर बच्चे नहीं है तो कजन्स खाएंगे, कोई ना कोई खाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम जितना भोग सकते हो वो तुम्हारा है, बाकी तो सब ईश्वर का है। ये ट्रेडिशन रहा है, धन हो, ज्ञान हो, बल हो, भाव रखो, सब ईश्वर का है। अब भाव रखने से नहीं होता है, अंदर से आना चाहता है, आता है। ऋषि जो रियलाइज करता है उसके अंदर से भाव आता है, ये मेरा नहीं है, सब तुम्हारा है। इसीलिए कहीं ऑथरशिप का कोई स्टाम्प नहीं देता, कोई छाप नहीं देता। अगला कंक्लूडिंग मंत्र है, तीन मंत्रों का ये एक ग्रुप था। अगला मंत्र है, मेरे साथ मिल के बोलिए, विद्याम चा विद्याम चा यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। सो ये कंक्लूडिंग मंत्र है, 11वां मंत्र कहता है। पहला मंत्र में क्या बोला कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, मैटेरियल लाइफ की उपासना करते हैं, वो डार्कनेस में, अंधेरे में गिरते हैं, मतलब उनकी लाइफ ज्यादा मिजरेबल हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। और जो विद्या या स्पिरिचुअल लाइफ को केवल एनग्रॉस्ड करते हैं, उनका ज्यादा मिजरेबल हो जाता है लाइफ आगे जाकर के। सेकेंड मंत्र में बोला जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उनका अपना यूज है, जो मैटेरियल चीजें हैं उनके अपनी यूज है। कंक्लूजन है, जो व्यक्ति चार ले सकते हैं, द स्मार्ट पर्सन, जो विद्या मतलब स्पिरिचुअलिटी, अविद्या द मैटेरियलिटी, दोनों को साथ लेकर चलता है, वो अविद्या से, मैटेरियल नॉलेज से, मैटेरियल यूज से मृत्यु को, डेथ को क्रश कर जाता है, पार कर जाता है। और जो विद्या है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसे अमृत को, इमोर्टेलिटी को प्राप्त करता है। हो सकता है आपको थोड़ा समझ में चीजें बात नहीं आई होगी। अविद्या अभी हमने समझा, जो कुछ भी संसार में है, जो भी नॉलेज आर्ट जो कुछ भी, ऑल दीज आर अविद्या, दे ऑल आर रिलेटेड टू आर बॉडी एंड माइंड इंटेलेक्ट। और पूरी अविद्या की जो भी हम बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, घर में, उन सब का एक ही यूज है, फाइट अगेंस्ट द डेथ। क्यों आप पैसा कमाना चाहते हैं कि सुखी रहें, बीमार पड़ेंगे तो पैसा होगा तो काम आएगा, भूख लगेगा तो पैसा होगा तो खाना खाएंगे, ठंड गर्मी से बचना है तो अच्छा घर बनाएंगे। मेडिकल साइंस क्यों है, क्योंकि आपको हेल्दी बनाया जाए कि आप जल्दी ना मरें। पॉलिटिक्स क्यों होता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस होंगे, देश ठीक से चलेगा तो लाइफ आपका ज्यादा इजी होगा। तो जो कुछ आप नाम लीजिए वो आपकी लाइफ को इजी करने के लिए है। जब लाइफ इजी होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, प्रॉब्लम फ्री होते हैं, तो आपका लाइफ बढ़ता है, दैट्स इट। और जब जब अविद्या बढ़ी, अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें, जैसे ही अविद्या बढ़ती है, लाइफ स्पैन जो बढ़ती जाती है, लोगों की जो लंजिविटी है, लंबा जीने की बढ़ती जाती है। सोचिए 50 साल पहले, 100 साल पहले, जब एक मां 5 बच्चे को 6 बच्चे को जन्म देती थी भारत में, 7-8 बच्चों को, वो 2-3 बच्चे तो मरी जाते थे, एवरेजली 2-3 मर जाते थे। तो माना जाता था कि इवन 50 ईयर्स बिफोर, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की भी बात करें, 50 साल से पहले अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो वो 30 या 40 ईयर्स होते होते 10 में से 5 या 6 रह जाते थे, मतलब 40% एवरेज, 100 साल पहले जाइए और आज उसकी रेशियो इवन गरीब देशों में भी, जहां भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी 2-3% 20% 30% तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों की मेडिकल में एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, डॉक्टर के पास पहुंचने बढ़ रही है, अविद्या बढ़ रही है। 100 साल पहले जब अकाल पड़ते थे, अकाल समझते जो फेमिन जो ड्रॉट होता था, अंग्रेजों के समय याद है जो बंगाल में अकाल पड़ा था, कोई हिस्ट्री पढ़ा होगा, चर्चिल के समय, तो उसमें अकाल में लाखों मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग 2-3 महीने में ही साफ हो गए, मर गए। डायरिया होती थी, प्लेग होता था, और जो डेथ की काउंटिंग शुरू होती थी वो हंड्रेड्स थाउजेंड्स में। आज कैंसर में भी उतने लोग नहीं मरते जितना सिंपल डायरिया में, नौजिया में, प्लेग में लोग मर जाते थे। क्यों? अविद्या बढ़ रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मनी, इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो अविद्या से हम मृत्यु को लंबा खींच सकते हैं। 25 साल का आदमी खान पान ठीक रखे, पैसा हो, बाकी चीजें प्रैक्टिकल नॉलेजेस हो, डॉक्टर पास पहुंच सकता हो, तो वो जो 25-30 साल में मरता था उसकी लाइफ 70-80 साल तक जा सकता है। तो दुनिया में जहां जहां जिस देश में अविद्या बढ़ी, अविद्या मतलब मैटेरियल लाइफ बढ़े, मैटेरियल नॉलेज बढ़ा, वहां वहां लोगों का लाइफ लंबा हुआ। नेचुरली साइंस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि हम ऐसा कुछ सूत्र पाएं कि बॉडी नष्ट ही ना हो। तो हो सकता है कल वो आपकी, अभी हम एवरेज जो डेवलप्ड कंट्री में जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेरे ख्याल से 80-85 इयर्स की है। भारत जैसे देशों में 65 करीब पहुंच चुके हैं हम, एवरेज जो लोग जीते हैं। जो गरीब देशों में, जो और बहुत गरीब देश हैं, तब भी 50 से ऊपर सब जगह हो गया है, पर 50-100 साल पहले 40-50 साल की एवरेज आयु व लाइफ स्पैन हुआ करता था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी अविद्या जो सांसारिक ज्ञान है वो बढ़ता है। तो यही मंत्र कहता है, जब अविद्या को इग्नोर मत करो, ये तुम्हारा अभ्युदय का कारण है। कणाद की भाषा में, महर्षि कणाद की भाषा में, ये तुम्हारा अभ्युदय है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर धर्म, डोंट ट्राई टू इग्नोर इट। कालिदास कहते हैं अपने कुमार शंभम प्रसिद्ध काव्य में, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तपस्या कर रही है तो उसको आकर के समझाते हैं शिव कि देखो शरीर पहला है, अगर तुम्हें धर्म की सिद्धि करनी है तो आपके शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। शरीर अविद्या है, धर्म विद्या है, बट टू गेट विद्या यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अविद्या। सो अविद्या से हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं, और अविद्या की पूरी, और सिर्फ आज साइंस डेवलप हुआ, मॉडर्न साइंस नहीं भाई, अगर इसकी इंटरेस्ट हमारे यहां नहीं होता तो आयुर्वेद इतना रिच नहीं होता, एस्ट्रोनॉमी इतना रिच नहीं होता, मैथमेटिक्स, आपको पता है दुनिया में सबसे पहले जो शास्त्र, जो फॉर्मल वे में जो मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, वो वैदिक लिटरेचरों का देन है। वो क्या है? सब अविद्या है। तो हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में अविद्या और विद्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। प्रवचन देने वाले साधु संन्यासी लोगों को माया का डर दिखा के दुनिया से काम धंधा छोड़ने के लिए इनकरेज नहीं करते थे। अपने आश्रम को तो आप 5 मंजिले 10 मंजिल बनाओ, 5 स्टार 8 स्टार 9 स्टार बनाओ, पर लोगों को रोज ये सुनाते रहो संसार माया है छोड़ो, संसार माया है छोड़ो, और क्या करो कुछ निकम में चले पैदा करो और अपने आश्रम को करोड़पति अरबपति खरबपति बनाओ। तो ये जो एक ट्रेंड चला उसका परिणाम हम दिखते हैं। लोग आपको कितने भारत में आज की तारीख में अगर आप सन्यासी या बाबाओं की संख्या काउंट करें, वैसी कोई सेंस वो नहीं है, सेंसस नहीं है, पर जो एक एवरेज सर्वे है तो करीब करीब 89 लाख करीब करीब साधु बाबा अलग अलग तरीके से हैं, एक सर्वे में हमने पढ़ा। और भारत में 53 या 54 लाख विलेजेस हैं। अगर सचमुच ये लोग इतने रियल होते तो एक एक गांव को एक एक साधु बदल सकता था। स्वामी दयानंद जी के स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में नारायण की सेवा करनी है तो शुरू करो अपनी नर नारायण से ना। मंदिरों में खरबों की संपत्ति जमा करते हो और मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी को गंदे नजर से देखते हो, उससे थोड़े भला होना होगा। वो मंदिर के बाहर बैठने वाला अविद्या है, उसको केयर करो। तो अविद्या मटेरियल चीजों से हम लाइफ को बदल सकते हैं, ज्यादा खुशी खुश बना सकते हैं। पर अगर कोई अविद्या में ही चिपक के रह गया, उससे आगे बढ़ा नहीं है, फिजिकली बहुत हेल्दी हुआ, मेंटली माइंड को भी बहुत स्ट्रांग बनाया, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है, तब भी लोग दुखी मिलते हैं। आप 10 गरीबों को बुला के लाओ, जितने भी गरीब कहां से, बिल्कुल गरीब जिसको रोज एक टाइम का खाना नहीं मिलता, ऐसे 10 लोगों की सर्वे करो और 10 बहुत टॉप रिच लोगों की भी सर्वे करो। सर्वे मतलब प्राइवेटली डिटेल उनकी लाइफ के बारे में समझो, कितने खुश हैं लाइफ में, कितना एंजॉय करते हैं, आपको बहुत फर्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गरीबी में भी इंटरनली वो ज्यादा बैलेंस्ड हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे गरीब खुश होते हैं या सारे धनी खुश होते हैं या दुखी, नहीं, मतलब आप बिना कुछ आपके पास होते हुए भी आप लाइफ में एंजॉय करना सीख सकते हो, सब कुछ होने पर भी नहीं सीख सकते हो। अगर आपकी पूरा फोकस केवल बॉडी और माइंड के लिए है, नेचुरली एक सर्टेन लेवल के बाद आपके अंदर का वैक्यूम होगा, खाली होगा, आपको जो चाहिए सारी सारा संसार जिसके लिए लड़ता है वो तो आपके पास है, पर तब भी आप खोखला हो। क्यों? आप अपनी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर करते हो। ये तुम्हारे पड़ोसी का हिस्सा नहीं है, तुम्हारा आत्मा, ये तुम्हारे अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जिसको हम इग्नोर करते हैं। इसीलिए केवल अविद्या पर जोर देने से हम अपने लाइफ का एक बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण सब कुछ होने पर भी हम दुखी मिलते हैं। सो इसीलिए अगर आप को दोनों तरह की खुशी चाहिए, महर्षि कणाद की भाषा में अभ्युदय भी, मतलब मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी हो, खुशी भी हो, और आप अंदर से भी खुश फील करें। अंदर से आप खुश कब होंगे? आप कभी भी अंदर से खुश नहीं होंगे कि बाहर का एटमॉस्फेयर अगर सब सही हो। मैं खुश होता अगर पत्नी ठीक से मिल जाती, मैं खुश होती अगर पति ठीक से मिल जाता, बच्चे थोड़ा इस टाइप के मिलते, घर इस टाइप का होता, फ्रेंड्स इस टाइप के होते, बीमारी इस टाइप की नहीं होती, लोग मेरे से ऐसे ट्रीट करते तो मैं खुश होता। और ऐसा क्यों होगा भला? ये तुम्हारे मर्जी से तो दुनिया चलती नहीं है, सबकी अपनी चलती है। तो मैं, मेरे दुखों का कारण है कि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं तुम सुधर जाओ तो मैं खुश रहूंगा, तुम ठीक हो जाओ तो मैं खुश रहूंगा, तुम ठीक हो जाओ तो मैं खुश होऊंगा। और दूसरा वाला क्यों ठीक होगा? उसकी अपनी मर्जी है। तो मुझे खुश रहना है तो मुझे अपने अंदर वो लानी पड़ती है। इसीलिए वो इलिटरेट है या लिटरेट है, वो पुअर है वो रिच है, खुशी कोई भी ला सकता है, खुशी कोई भी ला सकता है, ओनली थिंग इज आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। जब आप दूसरों से खुशी ढूंढते हो, पैसे से, रिलेशनशिप से, नाम से, प्रॉस्पेरिटी से, तो आपको वो खुशी तो मिलती है, वो एब्सोल्यूट खुशी नहीं मिल पाती है, आपको अंदर से ढूंढना पड़ता है। और जो अंदर की भी जर्निंग करते हैं, बाहर की भी जर्निंग करते हैं, वो बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं टू फाइंड हु आम आई, तो मोस्ट ऑफ हम अपने बॉडी से हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं से मतलब होता है मैं, मतलब ये शरीर। आपने मुझे कैसे कहा, आपने मुझे ऐसा कहा, मुझे मतलब मुझे इस बॉडी को, इंक्लूडिंग माइंड एंड इंटेलेक्ट। जो उपनिषद की डायरेक्शन है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम एक कॉम्बिनेशन हो शरीर मन और आत्मा का। मन में इसीलिए अलग से लेता हूं, ऑल्दो माइंड इज वेरी मच पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज ऑल्सो मैटेरियल। पर क्योंकि हम लोग माइंड को वेस्टर्न साइंटिफिक वे में थोड़ा माइंड को अलग पढ़ने की आदत पड़ चुकी है, तो इसीलिए मैं फोर्सफुली माइंड की नाम लेता हूं। तो शरीर और मन और आत्मा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो। मैं खुश रहूंगा जब ये तीनों हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं दुखी रहूंगा इन तीनों में से कोई एक अगर ठीक नहीं है। शरीर को बहुत ज्यादा, आप अपने राइट हैंड को 5 मीटर बढ़ा दीजिए और लेफ्ट हैंड को छोड़ दीजिए, तो थोड़े ही आप चल पाएंगे। जब दोनों हाथ सही हो, बैलेंस्ड हो, दोनों पैर बैलेंस्ड हो, दोनों आंखें बैलेंस्ड हो, तब आपको आप एंजॉय करते हैं। इसी तरह लाइफ में जब दोनों को आप एंजॉय करते हैं, तब आप खुश होते हैं। इसी को एक छोटी कहानी के साथ बात को विराम करेंगे, कंक्लूड करेंगे। बात है कि एक जंगल में एक बार आग लगा, तो लोग को, जो जानवर थे, लोग थे, सब भागने लगे। और वहां एक लेम था, जिसको लंगड़ा, जिसका पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, और एक अंधा भी था। वो दोनों भी दौड़ने लगे। अंधा दौड़ नहीं पाता था, गिर जाता था, क्योंकि उसको रास्ता नहीं दिखता था। और जो लेम है, जो लंगड़ा है, वो भी दौड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसके एक पैर नहीं है। दोनों एक दूसरे से टकराए, बोले तुम कौन हो, जो मैं ये हूं, तुम कौन हो, जो मैं अंधा हूं, क्या कर रहे हो, तो दौड़ रहे हैं बचने के लिए। दोनों कोशिश करते हैं भागने के लिए, भाग नहीं पाते हैं, गिरते हैं, सारी दुनिया भाग रही है। दोनों ने 2 मिनट रुका, एक दूसरे से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया, कंप्रोमाइज किया। देखो तुम्हारे पास पैर है, तुम दौड़ सकते हो, मेरे पास आंख है, मैं देख सकता हूं। मेरे पास पैर नहीं है, तुम्हारे पास आंख नहीं है, समझौता है, डील है कि मैं तुम्हारे सर गले में बैठूंगा, ऊपर बैठूंगा, पीठ पर बैठूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम चलोगे। दोनों के अंदर कंप्रोमाइज हुआ। लंगड़े ने रास्ता दिखाया, अंधा चलता गया, दोनों जंगल पार कर गए। देवियों सज्जनों, हमारी लाइफ ये लंगड़ा और अंधे की कहानी है, शरीर और आत्मा की कहानी है, मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ की कहानी है। दोनों में बैलेंस्ड बनाइए, इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी खुश रहेंगे, इस जीवन में भी बहुत एंजॉय करेंगे, मरने के बाद भी उस परम मुक्ति के, परमानंद के रास्ते पर चलेंगे। पर बेशर्त कि दोनों को साथ लेकर चले, क्योंकि एक लंगड़ा है और एक अंधा है। अपने ईगो के साथ दोनों अलग अलग चलेंगे, बॉडी को अलग करेंगे, केवल आत्मा के पीछे दौड़ेंगे, केवल आत्मा को छोड़ेंगे और बॉडी के पीछे दौड़ेंगे, तो आग वाले जंगल में कहीं ना कहीं दोनों जल के भस्म होंगे। तो ये स्मार्ट है कि दोनों को लेकर चले, मन को भी।